श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, हकीकी गीता, श्रीमद् भगवद् गीता, अथ त्रयोदशोध्याय, तेरहवां बाब। गीता की इब्तिदा में ही धृतराष्ट्र का सवाल था कि संजय, मैदान दीन यानी धर्म क्षेत्र और मैदान अमल यानी कुरुक्षेत्र में जंग की ख्वाहिश से इकट्ठा हुए मेरी और पांडु की औलाद ने क्या किया। अभी तक यह नहीं बताया गया कि वो मैदान है कहां, लेकिन जिस अजीम इंसान ने जिस मैदान में जंग का होना बताया, पेश करदा बाब में खुद ही उस मैदान के बारे में फैसला देते हैं कि वो मैदान यानी क्षेत्र दर हकीकत है कहां। श्री भगवान उवाच।
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः।
कुंती के पिसर, ये जिस्म ही एक मैदान है और इसको जो अच्छी तरह जानता है वो आलिम मैदान उसमें फंसा नहीं है बल्कि उसका नाजिम है, ऐसा उस उनसुर को जाहिर करने वाले अजीम इंसानों ने कहा है। जिस्म तो एक ही है, उसमें मैदान दीन और मैदान अमल, ये दो मैदान कैसे? दर हकीकत इस एक ही जिस्म में बातिन के दो खसाइल कदीमी है। एक तो आला दीन, आला माबूद से निस्बत दिलाने वाली पुरसवाब खसलत रूहानी दौलत है और दूसरी है दुनियवी दौलत। नापाक नजरिए से जिसकी तंजीम है, जो फानी दुनिया पर यकीन दिलाती है, जब दुनियवी दौलत की इफरात होती है तो यही जिस्म मैदान अमल यानी कुरुक्षेत्र बन जाता है। और इसी जिस्म के माबैन जब रूहानी दौलत की ज्यादती होती है तो यही जिस्म यानी धर्म क्षेत्र मैदान दीन कहलाता है। ये उतार चढ़ाव बराबर लगा रहता है, लेकिन रमज शनास अजीम इंसान की कुर्बत से जब कोई लाशरीक बंदगी के जरिए इबादत में लग जाता है तो दोनों खसाइल के दरमियान फैसला कुन जंग का आगाज हो जाता है। बतसलसुल रूहानी दौलत का उरूज और दुनियावी दौलत का खात्मा हो जाता है। दुनियावी दौलत के पूरी तरह खात्मे के बाद आला के दीदार की हालत आती है। दीदार के साथ ही रूहानी दौलत की जरूरत खत्म हो जाती है, लिहाजा वो भी खुद ब खुद भगवान में तहलील हो जाती है। बंदगी करने वाला इंसान माबूद से निस्बत बना लेता है। ग्यारहवें बाब में अर्जुन ने देखा कि कौरवों के जानिबदारों के बाद पांडवों के जानिबदार जंगजूबी जोग के मालिक में तहलील होते जा रहे हैं। इस तहलील के बाद इंसान की जो शक्ल है वही आलिम मैदान यानी क्षेत्रज्ञ है। आगे देखें।
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम।
अय अर्जुन, तू सारे मैदानों में आलिमे मैदान मुझे ही जान, यानी मैं भी आलिमे मैदान हूं। जो इस मैदान को जानता है वो आलिमे मैदान है, ऐसा इसे जाहिरी तौर पर जानने वाले अजीम इंसान कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी आलिम मैदान हूं, यानी श्री कृष्ण भी जोग के मालिक ही थे। क्षेत्र यानी मैदान और क्षेत्रज्ञ यानी आलिम मैदान, यानी तमाम उयूब के साथ कुदरत और इंसान यानी प्रकृति और पुरुष को उनसुर से जानना ही इल्म है, ऐसा मेरा मानना है। यानी बड़ी ही दीदार के साथ इनकी समझ का नाम इल्म है, कोरी बहस का नाम इल्म नहीं है।
तत्क्षेत्रं यच्च यात्रिक्च यद्विकारियतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मिश्रिणु।
वो मैदान जैसा है और जिन उयूब वाला है, वो जिस वजह से हुआ है, वो आलिमे मैदान भी जो है और जिस तरह के असर वाला है, उन सब के बारे में मुझसे मुख्तसर में सुन। यानी क्षेत्र मैदान उयूब वाला किसी वजह से हुआ है, जबकि आलिमे मैदान सिर्फ बा असर है। मैं ही कहता हूं, ऐसी बात नहीं है, वली हजरात भी कहते हैं।
ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो भीर विविध पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितै।
ये मैदान और आलिमे मैदान का उनसुर आरिफ हजरात के जरिए तमाम तरह से गाया गया है और तमाम तरह से वेदों की दुआओं यानी मंत्रों के जरिए तकसीम करके भी कहा गया है। वो खास तौर से मुअय्यन किए गए मुनासिब दलील के साथ यानी ब्रह्म सूत्र के जुमलों के जरिए बताया गया है। यानी वेदांत, वली, ब्रह्म सूत्र और हम एक ही बात करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण वही कहते हैं जो इन सब ने कहा है। क्या जिस्म यानी मैदान इतना ही है जितना दिखाई देता है? इस पर फरमाते हैं,
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरौ व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा।
अर्जुन, पांच अजीम अनासिर यानी मिट्टी, पानी, आग, आसमान, हवा, गुरूर, अक्ल और तबीयत, यानी तबीयत का नाम ना लेकर उसे गैर मरई मावरा खसलत कहा गया, यानी बुनियादी खसलत पर रोशनी डाली गई है जिसमें मावरा खसलत भी शामिल है। मजकूरा बाला आठ बुनियादी खसाइल और दस हवास, आंख, कान, नाक, दहन, जिल्द, जबान, हाथ, पैर, जिहार, मिकद, एक मन और पांच हवास के मौजूआत यानी शक्ल, लज्जत, महक, लफ्ज और लम्स। और
इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदारितम्।
ख्वाहिश, हसद, आराम, तकलीफ और इन सब का मजमुआ मादी जिस्म का ये जिर्म, हिर्स और सब्र, इस तरह मैदान के बारे में उयूब के साथ मुख्तसर में कहा गया। अल मुख्तसर यही मैदान की हकीकी शक्ल है जिसमें डाला गया بھلا اور برا تخم تاثرات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. جسم ہی میدان ہے, جسم میں گارا مسالہ کس چیز کا ہے؟ تو یہی پانچ عناصر, 10 حواس, 1 من وغیرہ جیسی پہچان اوپر گنائی گئی ہے, ان سب کا اجتماعی ساخت جسم ہے. جب تک یہ عیوب رہیں گے تب تک یہ جرم بھی موجود رہیں گے, اس واسطے کہ یہ عیوب سے بنا ہے. اب اس عالم میدان کی حقیقی شکل دیکھیں جو اس میدان میں ملوث نہیں بلکہ اس سے جدا ہے.
امانیتوامدم بھیتوام اہیونسا شانتیرارجوام آچاریوپاسنم شوچم ستھیریماتم ونگرہ.
اے ارجن, عزت و ذلت کا خاتمہ, غرور کے برتاؤ کی کمی, عدم تشدد یعنی اپنی اور دوسرے کسی کی روح کو تکلیف نہ دینا عدم تشدد ہے. عدم تشدد کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ چونٹی مت مارو. شری کرشن نے کہا کہ اپنی روح کو تنزل میں مت ڈالو. اس کو تنزل میں ڈالنا تشدد ہے, اور اس کی ترقی ہی خالص عدم تشدد ہے. ایسا انسان دوسری ارواح کی ترقی کے لیے بھی مائل رہتا ہے. ہاں, اس کا آغاز کسی کو ٹھیس نہ پہنچانے سے ہوتا ہے. یہ اسی کا ایک ایک حصہ ہے. لہذا عدم تشدد, معافی کا جذبہ, من اور زبان کی سادہ طبعی, مرشد کی فرما برداری یعنی مکمل عقیدت اور بندگی کے ساتھ مرشد کی خدمت, ان کی عبادت, پاکیزگی, باطن کا استقلال, من اور حواس کے ساتھ جسم پر قابو, اور
اندریارتھیشو ویراگیم انہنکار ایو چ جنم مرتیو جرا ویادھی دکھ دوشانو
درشنم. اس دنیا اور عالم بالا کے دیکھے سنے عیش و عشرت میں رغبت کا خاتمہ, غرور کی کمی, جن و موت, ضعیفی, بیماری اور عیش وغیرہ میں تکلیفوں کی عیوب کی بار بار فکر.
اسکتیرن بھیشونگہ پتردار گرہادیشو نتینچ سمچتتوام اشتا نشتو پپتیشو.
اولاد, بیوی, دولت اور مکان وغیرہ میں لگاؤ کا خاتمہ, پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے حصول میں طبیعت کا ہمیشہ مساوی رہنا یعنی عالم میدان کی ریاست, بیوی, اولاد وغیرہ گھر بار کی حالت میں ہی شروع ہوتی ہے.
مئی چانن्य योगेन भक्ति रव्य भिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम ارتر جن سوسری.
مجھ میں یعنی شری کرشن ایک جوگی تھے, یعنی ایسے کسی عظیم انسان میں لا شریک جوگ سے یعنی جوگ کے سوا دوسرا کچھ بھی یاد نہ کرتے ہوئے لا شریک عقیدت یعنی معبود کے علاوہ کسی دوسری سوچ کا ذہن میں نہ آنا, تنہائی کی جگہ کا استعمال, انسان جماعت میں رہنے کی رغبت کا نہ ہونا, اور
ادھیاتم گیان نتیتوم تتو گیانارتھ درشنم एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा।
रूह के इख्तियार वाले इल्म में यकसा हालत और इल्म जौहर के माने माबूद का बदी ही दीदार, ये सब तो इल्म है और इससे जो बरखिलाफ है वो सब जहालत है, ऐसा बताया गया है। उस उनसुरे आला माबूद के दीदार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम इल्म है। यानी बाप चार में उन्होंने कहा कि यज्ञ की तकमील के बाद यज्ञ जिस चीज को बाकी छोड़ देता है उस इल्म जाविदां का अक्स करने वाला अबदी माबूद से निस्बत पा लेता है, लिहाजा माबूद के बदी ही दीदार के साथ मिलने वाली जानकारी इल्म है। यहां भी वही बात कहते हैं कि उनसुरे आला रूह मुतलक के दीदार का नाम इल्म है, इसके बरखिलाफ सब जहालत है। गुरूर वगैरह का ना होना, मजकूरा बाला निशानियां इस इल्म की तकमीला है। ये सवाल पूरा हुआ।
गेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।
अर्जुन, जो जानने लायक है और जिसे जानकर फना पजीर इंसान लाफानी उनसुर को हासिल करता है उसे अच्छी तरह बताऊंगा। वो अबदी आला माबूद ना हक कहा जाता है और ना बातिल ही कहा जाता है, क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वो हक है, और जब इंसान उसके अंदर महू हो गया तब कौन किससे कहे, एक ही रह जाता है, दूसरे का एहसास नहीं। ऐसी हालत में वो माबूद ना हक है ना बातिल है, बल्कि जो खुद फितरी है वही है।
सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।
वो माबूद हर जानिब से दस्तोपा वाला, हर जानिब से आंख सर और दहन वाला, हर तरफ से कानों वाला यानी सुनने वाला है, क्योंकि वो दुनिया की हर शय में जारी वो सारी होकर कायम है।
सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृच।
वो तमाम हवास के मौजूआत को जानने वाला है फिर भी सारे हवास से मुबर्रा है, वो बिला लगाव वाला सिफात से खाली होने पर भी सबको संभालने और परवरिश करने वाला, वो सारी सिफात का लुत्फ उठाने वाला है यानी एक एक करके सारी सिफात को अपने अंदर जम कर लेता है। जैसा श्री कृष्ण कह आए हैं कि यज्ञ और रियाजतों का सारिफ मैं हूं, आखिर में सारी सिफात मुझ में तहलील हो जाती हैं।
बहिरन्तश्च भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।
वो माबूद सारे जानदारों के बाहर अंदर पूरी तरह मौजूद है, मुतहर्रिक व साकिन शक्ल में भी वही है, लतीफ होने से वो दिखाई नहीं पड़ता, ना काबिले फहम है, मन और हवास के दायरे से बाहर है, और बहुत करीब और दूर भी वही है।
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च।
ना काबिले तकसीम होकर भी वो तमाम मुतहरिक वो साकिन माद्यात में अलग अलग सा महसूस होता है, वो काबिले फहम माबूद तमाम माद्यात को पैदा करने वाला, संभालने और परवरिश करने वाला और आखिर में उनका खात्मा करने वाला है। यहां खारिजी और दाखिली दोनों ख्यालात की जानिब इशारा किया गया है, जैसे बाहर पैदाइश और अंदर बेदारी, बाहर परवरिश और अंदर खैर बरकत के फर्ज की अदायगी, बाहर जिस्म की तब्दीली और अंदर हर चीज की तहलील यानी माद्यात की तखलीक के वजूहात की तहलील, और इस तहलील के साथ ही अपनी हकीकी शक्ल को हासिल कर लेता है, ये सब उसी माबूद के निशानात है।
ज्योतिषाम ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम् ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्टितम्।
वो काबिले फहम माबूद नूर का भी नूर है, अंधेरे से बेहद मावरा कहा जाता है, वो मुकम्मल बशक्ल इल्म है, मुकम्मल आलिम है, काबिले फहम है और इल्म के जरिए ही हासिल होने वाला है। बदीही दीदार के साथ मिलने वाली जानकारी का नाम इल्म है। ऐसी जानकारी के जरिए ही उस माबूद का हासिल होना मुमकिन है। वो सबके दिल में मौजूद है, उसके रहने का मकाम दिल है, कहीं और तलाश करने पर वो नहीं मिलेगा। लिहाजा दिल के अंदर तसव्वुर और जोक के बर्ताव के जरिए ही उस माबूद के हुसूल का तरीका है।
इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।
अय अर्जुन, बस इतना ही मैदान यानी क्षेत्र इल्म और काबिले फहम माबूद के शक्ल के बारे में मुख्तसरन बताया गया है, इसे जानकर मेरा बंदा मेरी मुजस्सम शक्ल को हासिल कर लेता है। अभी तक जोग के मालिक श्री कृष्ण ने जिसे मैदान कहा था उसी को कुदरत, और जिसे आलिमे मैदान कहा था उसी को अब वो इंसान यानी पुरुष लफ्ज से इशारा करते हैं।
प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्।
ये कुदरत और इंसान यानी प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अबदी समझ और सारे उजूब तीनों सिफात वाली कुदरत से ही पैदा हुए हैं, ऐसा समझ।
कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते।
फेल और वसीला यानी जिसके जरिए आमाल सादिर होते हैं, इरफान तर्क दुनिया वगैरह, और नामुबारक आमाल होने में ख्वाहिश, गुस्सा वगैरह वसीला हैं, को पैदा करने का सबब कुदरत कही जाती है, और ये इंसान आराम और तकलीफों को भुगतने की बिना पर वसीला कहा जाता है। सवाल उठता है कि क्या वो भुगतता ही रहेगा या इससे उसे कभी नजात भी मिलेगी। जब कुदरत और इंसान दोनों ही अबदी हैं तो कोई इनसे आजाद होगा कैसे। इस पर फरमाते हैं,
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजां गुणा कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु।
कुदरत के दरमियान में खड़ा होने वाला इंसान ही कुदरत से पैदा होने वाली सिफात के काम की शक्ल वाली चीजों का लुत्फ उठाता है, और इन सिफात के साथ ही इस जीह रूह की नेक वो बद शक्लों यानी योनियों में पैदाइश लेने की वजह है। ये वजह यानी कुदरत की सिफात का साथ खत्म होने पर ही आवागमन से निजात मिलती है। अब उस इंसान पर रोशनी डालते हैं कि वो किस तरह कुदरत के माबैन खड़ा है।
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः।
वो इंसान करीबी नाजिर यानी उपद्रष्टा, दिल की दुनिया में बहुत ही करीब, हाथ पांव मन जितने आपके करीब हैं उनसे भी ज्यादा करीब नाजिर की शक्ल में मौजूद है। उसकी रोशनी में आप नेक करें या बद करें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो नाजिर की शक्ल में खड़ा है। रियाजत का सही सिलसिला पकड़ में आने पर राह रौ कुछ ऊपर उठा, उसकी जानिब बढ़ा तो नाजिर इंसान का सिलसिला बदल जाता है। वो यानी अनुमंता इजाजत देने लगता है, एहसास देने लगता है। रियाजत के जरिए और करीब पहुंचने पर वही इंसान भरता यानी राजिक बनकर परवरिश करने लगता है, जिसमें आपकी खैर बरकत का भी इंतजाम कर देता है। रियाजत और ज्यादा लतीफ होने पर वही भोक्ता यानी सारिफ हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, यज्ञ रियाजत जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो इंसान कबूल करता है, और जब कबूल कर लेता है उसके बाद वाली हालत में यानी महेश्वरः अजीम माबूद की शक्ल में ढल जाता है, वो कुदरत का मालिक बन जाता है। लेकिन अभी कहीं कुदरत जिंदा है तभी उसका मालिक है। इससे भी ज्यादा बुलंदी की हालत में वही इंसान जब आला माबूद से मंसूब हो जाता है तब रूह मुतलक कहलाता है। इस तरह जिस्म में मौजूद रहते हुए भी ये इंसान परे यानी मावराई ही है, हर तरह से इस कुदरत से मावरा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरू में वो नाजिर की शक्ल में था, धीरे धीरे तरक्की होते होते आला का लम्स कर माबूद की शक्ल में ढल जाता है।
य एवं वेति पुरुषम् प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते।
इस तरह आदमी को और सिफात के साथ कुदरत को जो इंसान बदी ही दीदार के साथ जान लेता है, वो हर तरह की जिंदगी गुजारता हुआ भी दोबारा नहीं पैदा होता, यानी उसकी दोबारा पैदाइश नहीं होती, यही नजात है। अभी तक जोग के मालिक श्री कृष्ण ने भगवान यानी ब्रह्मा और कुदरत यानी प्रकृति की रूबरू जानकारी के साथ मिलने वाली आला नजात यानी उसकी दोबारा पैदाइश से नजात पर रोशनी डाली और अब वो उस जोग पर जोर देते हैं जिसका तरीके कार है इबादत, क्योंकि इस अमल को अमली जामा पहनाए बगैर कोई हासिल करता नहीं है।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे।
अय अर्जुन, उस आत्मानम यानी रूह मुतलक को कितने ही इंसान तो यानी आत्मना अपने बातिनी गौर फिक्र से तसव्वुर के जरिए आत्मनी यानी दिल की दुनिया में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग यानी इल्मी जोग के जरिए यानी अपनी कुव्वत को समझते हुए इसी अमल में लगे होते हैं, और दूसरे बहुत से लोग उसे बेगरज अमली जोग के जरिए देखते हैं, खुद सुपुर्दगी के साथ उसी मुअय्यना अमल में लगे होते हैं। पेश करदा श्लोक में खास वसीला है तसव्वुर यानी ध्यान। उस तसव्वुर में लगने के लिए इल्मी जोग और बेगरज अमली जोग दो रास्ते हैं।
अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा।
लेकिन दूसरे जिनको रियाजत का इल्म नहीं है, वो इस तरह ना जानते हुए अन्येभ्यः दूसरे जो उनसुर को जानने वाले अजीम इंसान हैं, उनकी नसीहत सुनकर ही इबादत करते हैं, और सुनकर लगे हुए वो इंसान भी इस मौत की तमसील दुनियावी समंदर से बिलाशुबा किनारा पा जाते हैं। लिहाजा कुछ भी ना हो सके तो सोहबते सालेह में लग जाएं।
यावत समझायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ।
अय अर्जुन, यहां तक के जो कुछ भी मुतहरिक वो साकिन चीजें पैदा होती हैं, उन सब को तू मैदान यानी क्षेत्र और आलिमे मैदान यानी क्षेत्रज्ञ के इत्तेफाक से ही पैदा हुई जान हुसूल कब होता है, इस पर इरशाद फरमाते हैं।
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
जो इंसान खास तौर से खत्म होते हुए मुतहर्रिक वो साकिन हर शय में लाफानी माबूद को मुसावात की नजर से मौजूद देखता है, वही हकीकत देखता है, यानी उस कुदरत के खास तौर से खत्म होने पर ही बशक्ल रूह मुतलक है, इससे पहले नहीं। इसी पर गुज़िश्ता बाब 8 में भी कहा था कि भूत भावोद भव करो विसर्गः कर्म संगिनियतः। जानदारों के वो ख्याल जो नेक ख्वाह बद कुछ भी यानी तासुरात तकलीफ करते हैं, उनका खात्मा हो जाना ही आमाल की इंतहा है। उस वक्त अमल मुकम्मल है। वही बात यहां भी कहते हैं कि जो मुतहर्रिक वो साकिन हर शय को खत्म होते हुए और भगवान को मुसावात के साथ कायम देखता है, वही सही देखता है।
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नहि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।
क्योंकि वो इंसान हर जगह मुसावी ख्याल से मौजूद माबूद के वजूद को मुसावी यानी जैसा है वैसा ही उस तरह देखता हुआ खुद को अपने जरिए बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, लिहाजा वो आला नजात को हासिल करता है। हासिल करने वाले इंसान की पहचान बताते हैं।
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति।
जो इंसान सारे आमाल को हर तरह से कुदरत के जरिए ही किया जाना दिखाता है, यानी जब तक कुदरत है तभी तक आमाल का होना देखता है और रूह को ना करने वाली देखता है, वही हकीकत देखता है।
यदा भूत पृथक भावं एकस्थमनुपश्यति ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा।
जिस दौर में इंसान माद्यात के अजीब व गरीब अंदाजों में वाहिद रूह मुतलक को रवां मौजूद देखता है और उस रूह मुतलक से ही तमाम माद्यात की तफसील देखता है, उस वक्त वो रूह मुतलक से मंसूब होता है। जिस वक्त ये हालत आ गई उसी वक्त वो माबूद को हासिल कर लेता है। ये निशानी भी रमज शनास अजीम इंसान की ही है।
अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।
कुंती पिसर, अबदी होने से और सिफात से मुबर्रा होने से वो लाफानी माबूद जिस्म में मौजूद होते हुए भी हकीकत में ना करता है ना मुलविस ही होता है, किस तरह?
यथा सर्वगतम सौक्ष्म्याद् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते।
जिस तरह हर जगह मुहित आसमान लतीफ होने की वजह से मुलविस नहीं होता, ठीक वैसे ही हर जगह जिस्म में मौजूद होने के बावजूद भी रूह सिफात से खाली होने के बाइस जिस्म के सिफात से मुलविस नहीं होती। आगे बताते हैं।
यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।
अर्जुन, जिस तरह एक ही सूरत तमाम कायनात को रोशन करता है, इसी तरह एक ही रूह तमाम मैदान को रोशन करती है, आखिर में फैसला देते हैं।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्।
इस तरह मैदान यानी क्षेत्र और आलिमे मैदान यानी क्षेत्रज्ञ के रास को और उयूब के साथ कुदरत से आजाद होने के तरीके को जो इल्मी नजर से देख लेते हैं वो आरिफ हजरात आला माबूद रूह मुतलक को हासिल करते हैं, यानी मैदान और आलिमे मैदान को देखने की नजर इल्म है और इल्म बदी ही दीदार का ही मुतरादिफ है। मग़्ज़े सुखन निष्कर्ष। गीता की इब्तिदा में मैदानी दीन यानी धर्म क्षेत्र का नाम तो लिया गया, लेकिन वो मैदान दर हकीकत है कहां? वो मकाम बताना बाकी था जिसे खुद शरीयत के मुसन्निफ ने पेश करदा बाब में साफ किया कि अर्जुन, ये जिस्म ही एक मैदान यानी क्षेत्र है, जो इसकी समझ रखता है वो आलिमे मैदान यानी क्षेत्रज्ञ है, वो इसमें मुलविस नहीं बल्कि ला ताल्लुक है, इसका नाजिम है। अर्जुन, तमाम मैदानों क्षेत्रों में मैं भी आलिमे मैदान क्षेत्रज्ञ हूं। दूसरे अजीम इंसानों से अपना मवाजिना किया, इससे जाहिर है कि श्री कृष्ण भी एक जोगी थे, क्योंकि जो जानता है वो आलिमे मैदान है, ऐसा अजीम इंसानों ने कहा है। मैं भी आलिमे मैदान हूं, यानी कि दूसरे अजीम इंसानों की तरह मैं भी हूं। उन्होंने मैदान जैसा है जिन उयूब वाला है, आलिमे मैदान जिन असरात वाला है, उस पर रोशनी डाली। मैं ही कहता हूं, ऐसी बात नहीं है, वली हजरात ने भी यही बात बताई है। वेद की बंदिशों यानी छंदों में भी इसी को तकसीम करके दिखाया गया है। ब्रह्म सूत्र में भी वही देखने को मिलता है। जिस्म यानी जो मैदान है, क्या इतना ही है जितना दिखाई देता है? उसके वजूद के पीछे जिन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है, उनको शुमार कराते हुए बताया कि 8 बुनियादी खसाइल यानी अष्टधा मूल प्रकृति, गैर मरई कुदरत यानी अव्यक्त प्रकृति, 10 हवास और मन। हवास के 5 मौजूआत उम्मीद, हिर्सो हवस, इस तरह इन उयूब का इज्तिमाई मजमुआ ये जिस्म है। जब तक ये मौजूद रहेंगे तब तक जिस्म किसी ना किसी शक्ल में रहेगा ही। यही मैदान है जिसमें बोया गया नेको बद, तुख्म, तासुर यानी संस्कार की शक्ल में उगता है, हवास से बच जाता है, वो आलिमे मैदान यानी क्षेत्रज्ञ है। आलिमे मैदान की शक्ल को बताते हुए उन्होंने खुदाई सिफात पर रोशनी डाली और कहा कि आलिमे मैदान इस मैदान को रोशन करने वाला है। उन्होंने बताया कि रियाजत के तकमीली दौर में उनसुरे आला रूह मुतलक का बदी ही दीदार ही इल्म है। इल्म का माना है बदी ही दीदार। इसके अलावा जो कुछ भी है जहालत है, वो जानने लायक चीज है आला माबूद। वो न हक है और न बातिल, वो इन दोनों से मावरा है। उसे जानने के लिए लोग दिल में तसव्वुर करते हैं, बाहर बुत रख कर नहीं। बहुत से लोग इल्मी जोग यानी सांख्य के वसीले से तसव्वुर करते हैं, तो बकाया लोग बेगरज अमली जोग खुद सुपुर्दगी के साथ उसके हुसूल के लिए उसके मुअय्यना अमली इबादत का बर्ताव करते हैं। जो उसका तरीका नहीं जानते, वो लोग मुबस्सिरे अजीम इंसानों के जरिए सुनकर इबादत का बर्ताव करते हैं, वो भी आला इफादे को हासिल करते हैं। लिहाजा कुछ भी समझ में ना आए तो उसकी समझ रखने वाले अजीम इंसान की सोहबत लाजमी है। मुस्तकिल मिजाज अजीम इंसान की निशानी बताते हुए जोग के मालिक श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे आसमान हर जगह बराबर रहता हुआ भी मुलविस नहीं है, जैसे हर तरफ रोशनी करते हुए भी सूरज ला ताल्लुक है, ठीक इसी तरह मुस्तकिल मिजाज इंसान हर जगह बराबर माबूद को वो जैसा है वैसा ही देखने की सलाहियत वाला इंसान मैदान से या कुदरत से पूरी तरह ला ताल्लुक है। आखिर में उन्होंने फैसला दिया कि मैदान और आलिम मैदान की जानकारी इल्मी नजरों से ही मुमकिन है। इल्म जैसा कि पहले बताया गया उस माबूद के बदी ही दीदार के साथ मिलने वाली समझ है। शरीयतों को बहुत ज्यादा रटकर दोहराना इल्म नहीं बल्कि मुताला और अजीम इंसानों से उस अमल को समझकर, उस अमल की राह पर चलकर मन के साथ हवास पर काबू और उस काबू के भी तहलीली दौर में उनसुरे आला को देखने के साथ जो एहसास होता है उसी एहसास का नाम इल्म है। अमल जरूरी है। इस बाब में खास तौर से आलिम मैदान यानी क्षेत्रज्ञ का तफसीली बयान किया गया है। दर हकीकत मैदान यानी क्षेत्र की शक्ल मुहित है। जिस्म कहना तो आसान है लेकिन जिस्म का ताल्लुक कहां तक है, तो सारी कायनात बुनियादी खसाइल की तफसील है। लामहदूद खलाओं तक आपके जिस्म का फैलाव है, उनसे आपकी जिंदगी कुव्वत बख्श है, उनके बगैर आप जी नहीं सकते। ये जमीन, दुनिया, जहान, मुल्क, सूबा और आपका ये दिखाई देने वाला जिस्म उस कुदरत का एक छोटा हिस्सा भी नहीं है। इस तरह मैदान यानी क्षेत्र का ही इस बाब में तफसीली बयान है। लिहाजा ओम तत्सदिति श्रीमद भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदशोध्याय। इस तरह श्रीमद भगवद गीता की तमसील उपनिषद वो इल्म तसव्वुफ और इल्म रियाजत से मुताल्लिक श्री कृष्ण और अर्जुन के मुकालिमे में मैदान आलिम मैदान बाब जुज जोग नाम का 13वां बाब मुकम्मल होता है। इति श्रीमद परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गणानंद कृते श्रीमद भगवद गीतायाः यथार्थ गीता भाष्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्याय। इस तरह काबिले एहतराम परमहंस परमानंद जी के मुकल्लिद स्वामी अड़गणानंद के जरिए लिखी श्रीमद भगवद गीता की तशरीह यथार्थ गीता हकीकी गीता में मैदान आलिमे मैदान बाबे जुज जोग यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम का 13वां बाब मुकम्मल हुआ। हरिओम तत्सत।